अध्याय छः, स्त्री और कानून, कागज के फूल। डिग्रियां और डिक्रियां नव स्वतंत्र देशों में कागज के फूल बन गई हैं। दबी कुचली अस्मिताओं को संविधान में तो बराबरी का अधिकार स्वतंत्रता के पैकेज के रूप में दे दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियां भी शामिल थी। अवसरों की समानता, न्याय की नजरों में सर्वथा एक होने की घोषणा और वोट डालने का अधिकार औपनिवेशिक संप्रभुओं के विदाई समारोह यानी भारतीय गणतंत्र की घोषणा का ही पैकेज था। उसके लिए हमें अलग से संघर्ष करने की जरूरत न हुई जैसे कि पश्चिमी देशों में। स्त्री आंदोलन सफरेज मूवमेंट के रूप में परवान चढ़ा। अल्जीरिया और तुर्की और ग्रीस, रूस और चेचेन, फारस और अरब, हुडूस और तुत्सिन, ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी, लीबिया और इजिप्ट लगातार लड़ भिड़कर शांत हुए तो कम्युनिस्टों और भ्रष्ट पूंजीपतियों के बीच का शीत युद्ध अपने अस्ताचल पर सभ्यता संघर्ष के बीच डाल गया। वितरण और कल्याणकारी राज्य की सफलता में नागरिक समाज की भूमिका अलग से रेखांकित हुई और यह भी आम सहमति बनी कि मानवाधिकारों की खातिर होने वाले सारे संघर्ष अहिंसात्मक होने हैं। 1 मिलियन अमेरिकन मरे तो 10 मिलियन रूसी यहूदी और जिप्सी, 3 मिलियन कम्यूचियन, 1000 मिलियन बोसेनियन संस्कृति देवी के रौद्र रूप की भेंट पहले ही चढ़ चुके थे। बिगड़ा था तो किसका बिगड़ा था? सोचने की बात यह थी कि फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क, हांगकांग, जोहान्सबर्ग, इस्तांबुल, लॉस एंजल्स, मैक्सिको सिटी के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरोक्रेट, व्यापारी और राजनेता 7 सितारा होटलों में मीटिंग करते हुए ठाठ में थे और सुरक्षित भी। बिगड़ा तो सड़क के लोगों का, जिनकी दुनिया में आज तक एक हरी भरी, बेहतर और उत्फुल्ल दुनिया का सपना है और करुणा संबलित न्याय दृष्टि का आह्वान। करुणा संबलित न्याय दृष्टि ही स्त्री दृष्टि है, जो यह मानकर चलती है कि एक दमन चक्र का जवाब दूसरा दमन चक्र होता रहे तब तो थमे ही नहीं सिलसिला। आदमी के व्यवहार और उसके भौतिक उत्पादों का सम्यक विनियोग ही आगे आने वाली पीढ़ियों को व्यापारियों और विजेताओं के धमगज्जर से बचाएगा। जियो और जीने दो, ये सर्वतोमुखी सार्वजनीन विकास का एकमात्र सूत्र है। सांस्कृतिक फॉल्ट लाइन दुनिया की राजनीतिक अस्थिरता का भी कारक बन गई है। सांस्कृतिक प्रोसेसर के रूप में स्त्रियों की उद्धूर शक्ति का विनियोग जरूरी है। अगर यह ढंग से नहीं हुआ तो अधिकारी शक्तियां उनके फंतासे के झिलमिल प्रदेश में स्वर्ण मृग या स्वर्ण कंदुक इसी तरह छोड़ती रहेंगी जैसे कभी सीता और अटलांटा के मार्ग में छोड़े थे। वयस्क स्त्री के भीतर एक बच्चा स्त्री भी बसती है जिसकी प्रकृति दुधकट्टू बच्चे की प्रकृति से मिलती जुलती मानी जा सकती है। यह बच्चा स्त्री झेलमिल प्रलोभनों से यूं ही बहल जाती है जैसे दुधकट्टू या वंचित बच्चा खिलौनों से। अतिवादी शक्तियां दंगों में, युद्ध शिविरों में या फैशन रैंपों में इस बाल बुद्धि स्त्री को बहला कर ले जाती है। एक तरह से ये झिलमिल तर्क के राष्ट्र की सांस्कृतिक प्रहरी वे ही है माता कालिका, और दूसरी ओर यह मुगालता की देह ही तो उनकी एकमात्र पूंजी है। यह देह जो उनके शोषण का प्राइम साइट रही है उनकी मुक्ति का रास्ता भी खोल सकती है यदि मीडिया की माया नगरी में इसका छाया अनुवाद वे होने दे और अप्सरा परी या बारबी गुड़िया बनकर दूर से लुभाए दिखाए दे जैसे कि शोधों को अंगूठा दिखा रही है। 1.5 मिलियन मीडिया अभियोजक, इंफोस्फियर और स्वागत उद्योग की अन्य कटी छटी सजी धजी मनोहर बालाएं लगातार मुस्कुराते रहने को जो अभिशप्त हैं अक्सर अपने मुस्कान का उपयोग घूंघट के रूप में ही कर रही हैं। घर से पिटकर भी निकली हो तो मुस्काना, बच्चा बीमार और अकेला हो घर पर तब भी मुस्काना, खून की कमी से चक्कर आ रहे हो तब भी हंसना, कोई लगातार प्रेम के दावे ठोकता हुआ होटल के कमरे में चलने को कह रहा हो तो भी हंसना, नए तरह की ड्रेस कोड है यह मनहर मुस्कान, नए ढंग की पर्दादारी, या यह आरोपित मुस्कान मुक्ति का मार्ग खोलेगी? क्या यह खुद ही मय दानव का प्राचीर नहीं? दुख भी बड़ा दुर्ग है लेकिन उससे भी बड़ा कैद खाना है सुख का अभिनय यानी फैकिंग जो अंतरंग क्षणों में भी स्त्रियां करती हैं। देह पर खेली गई हर कबड्डी और वन मानसी उछल कूद दांत पर दांत रोप कर झेल जाती हुई कभी किसी भय से तो कभी मात्र इस करुणा से वशीभूत होकर कि बेचारा यह तो ढह ही जाएगा यदि इसके इस विकट उपक्रम को प्रोत्साहन पुरस्कार भी नहीं दिया। यह देव वैसे भी किस काम की, मिट्टी में मिल जाएगी तो मिल जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह अभिनय न स्त्री के अपने सम्यक विकास के हित में है, न उसके लिए स्वाभिमान सम्मत इस पर दया दिखाई जाती है। इस तरह पड़ती है झूठ की बुनियाद, इस सफेद झूठ की बुनियाद जो बड़े बुलबुले की तरह एक मिनट की रंगीली तो प्रतिभाषित कर देता है लेकिन फिर इस तरह से फुस होता है कि पूछिए मत। स्त्रियों का भाषिक वैभव, उनकी सुंदर मुस्कान और कमनीयता एक तरह से उनका वरदान भी है और अभिशाप भी। मंधनकारी भी यह हो सकता है और मुक्तिकारक भी। सफेद झूठों के पक्ष में आसानी से तर्क दिए जा सकते हैं कि ये तो जीवन का नमक है और चीनी और चंद खिलौना और पता नहीं क्या क्या। यह सृष्टि खुद ही एक सुंदर मनोहारी झूठ है। साहित्य भी कल्पना से अधिक कल्पना है, यानी यथार्थ के चुनिंदा क्षणों का यूटोपिया विनियोग आदि आदि। बाइबिल दूसरों का दिल रखने के लिए या किसी को बचाने के लिए उचारे गए झूठों को फिक्शन या मेमनावर्णी दयालु झूठ कहता है। इन्हें वह पाप भी नहीं मानता। पुराण सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत न ब्रुआत सत्यम अप्रियम की बात कहते ही है। व्यावहारिकता का तकाजा भी है कि अप्रिय बातें हिंसक ढंग से उचारी न जाए। हर अच्छी बुरी टिप्पणी जो मन से गुजर रही है बोल ही दी जाए तो शब्द बम की तरह छूटे, हर बात एक विस्फोट ही मचा दे। सच सुनने की ताकत विकसित होनी चाहिए, सिर्फ सच कहने की ताकत नहीं। मुक्ति का उत्स ही वह बिंदु है जहां बोलने वाला सच बोलते न सकुचाए और सुनने वाला सच सुनते। स्त्री मुक्ति एक साझा चूल्हा है। मुझे हमेशा लगता है जैसे एक स्त्री को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करना है। स्त्री मुक्ति में सबकी मुक्ति है। तैयार करनी एक ऐसी फिजा जहां सच कहते या सुनते किसी की आंख न झुके, कोई किसी का हक छीने नहीं, सबकी दुनिया सबकी धरती हरी भरी उत्फुल्ल हो और झूठ किसी जीवन का चंद्र खिलौना नहीं बने। बालपन से तो निकलना है, वयस्क होना है इस पूरी मनुष्यता को उस सम्यक दृष्टि के साथ जो जिसकी लाठ उसकी भैंस के अराजकतावादी दर्शन में बिल्कुल विश्वास नहीं करती और इतिहास के भूलों से सीख लेकर हर तरह की आतंक प्रवर छीन छपट का अहिंसक किंतु अटल प्रतिरोध करती है। इस तरह का प्रतिरोध प्रजातंत्र में ही संभव है। मानवाधिकार वहीं सही ढंग से पल्लवित पुष्पित हो सकते हैं। कानून के आश्रय एक सजग नागरिक समाज के प्रस्तावों प्रतिरोधों का नतीजा है कि कानून मानवीय प्रस्तावनाएं बनकर उभरे हैं, किंतु कानून की भाषा और उसके भाष्य इतने दुरूह हो गए हैं कि कई कई सुनवाइयां तो व्यर्थ की लकड़पेंच भी निकल जाती है। अधिवक्ता लोभी या लद्दड़ न्यायमूर्तियां बेजान और सुस्त महज लकड़ी का हथौड़ा ठक ठक ठक। जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड, जैसे डिकेंस के समय थी अब तक है ही। 30 वर्ष की उम्र में किसी ने किसी का खून कर दिया तो जब तक फैसला मिलेगा वह अपनी उम्र मजे में काट लेगा। जमानत लेता लेता कसहरियां बेल धूकने की जगह हो गई हैं, परिवार कंगाल हो जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं एक छोटी सी सुनवाई में। एक पजामा दो भाई, पारा पारी कचहरी जाई, क्या अर्थ है ऐसी ठट्ठेदार कहावतों का। ये इसी दयानंदनीय अनुभव पर आधारित है कि एक केस की सुनवाई में परिवार की यह हालत हो गई है कि दो भाइयों के बीच एक ही पजामा साबुत बचा, कचहरी जाना हो तो दोनों एक साथ नहीं निकल पाते, बारी बारी ही जा पाते, वह भी गठरी मुठरी लेकर की क्या जाने कितने महीने फुटपाथ पर यूं ही काटने पड़े। स्त्री विषयक जो महत्वपूर्ण कानून इधर पारित हुए हैं उनमें कुछ से जुड़ी विडंबनाओं की चर्चा विशेष रूप से करना चाहूंगी। विषय दहेज, बलात्कार, भ्रूण हत्या, बेटियों का उत्तराधिकार, घरेलू हिंसा बिल और सहजी। विचाराधीन बिलों में प्रमुख है विधायिका में आरक्षण और यौन कर्मियों को लाइसेंस। पिछड़ी जातियां पिछड़े वर्ग की महिलाओं के दोहरे आरक्षण की बात कहती हैं, इसलिए यह मामला खटाई में पड़ा है। यौन कर्मियों को लाइसेंस देने पर एक आपत्ति तो यही समझ में आती है कि वह श्रम की गरिमा के विरुद्ध यानी आलस्य को लाइसेंस देने जैसा है। पुलिस और अन्य मध्यस्थों के उत्पात से यह लाइसेंस स्त्रियों को बचा लेगा। जिन विस्थापितों, अधिक उम्र के कुंवारों, विधुरों, परित्यक्तों, परदेशियों और यौन बुभुक्षा से पीड़ित मानसिक रोगियों का यौन जीवन बाधित है उन्हें आराम फरमाने की एक सुरक्षित जगह मिल जाएगी, किंतु उन सब स्त्रियों के लिए यह आत्मघाती व्यवसाय एक आसान विकल्प हो जाएगा जो शिक्षा, स्वाभिमान आदि के अभाव में यह समझ ही नहीं पाती कि खुजली मिटाने वाली एक मशीन के रूप में देह का अनवरत उपयोग उसे मानवीय गरिमा से गिराता है। प्रेमहीन सेक्स, वह भी तरह तरह के रंग रूटों के साथ, एक खासी उबाऊ प्रक्रिया हो सकती है जिसमें एलियनेशन और अभियांत्रिकरण के काफ़ी खतरे हैं। सेक्स वर्कर कहने को कहती हैं कि और 10 कामों की तरह यह भी एक काम है। बुद्धिजीवी दिमाग बेचते हैं, पुस्तकें और अन्य उत्पाद, तो देह में भी ऐसी कौन सुरखाब का पर लगा है। बर्तन आदि घिसने या अन्य घरेलू कामों की कीमत अभी उतनी नहीं आंकी जा सकती जितनी सेज की। वह यह भी कहती हैं कि उनके ही दम से समाज की अन्य बहु बेटियां सुरक्षित हैं, किंतु हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और स्थिति इतनी ही सुखद होती तो हर यौनकर्मी अपनी बेटी को भी यही बनाना चाहती, पर कोई यौनदासी ऐसा नहीं चाहती। कुल मिलाकर यह किया जा सकता है कि 4-5 वर्षों के लिए लाइसेंस दे दिया जाए, इतने में वे रोजगार के अन्य साधन जुटा लें। कुल मिलाकर तो है यह महाजाल ही, दाल भात का कौर या पेप्सी पिज्जा का पैकेज सेक्स को भी बना दे, अगर कि पैसे डालो और काउंटर पर वह हाजिर हो, उससे वह रोमांस व थ्रिल ही झड़प जाएगा जिसके पीछे लोग पागल रहते हैं। भोनु भाव न जाने पेट भरे से काम, जानवर और मशीन हो जाने से खुद को बचाना तो चाहिए। अर्गलाएं हैं तब तो इतने अपराध हैं, अर्गलाएं न रहें तब दो ही सूरतें होंगी, एक जंगल राज, दूसरा रोबोटीकरण। दोनों भयंकर बातें हैं, फिर भी यह मानकर चला जाए कि बड़े फ्रेम में टंग जाते हैं ब्रह्मचर्य के कड़े नियम, उसी फ्रेम के पीछे चिड़िया गर्भवती हो जाती है। प्राकृतिक आवेगों पर पूर्ण विराम तो वैसे भी लगने से रहा, पर आंख का एक भरम चाहिए ताकि सनद रहे। रहा आरक्षण का मसला तो पंचायतों को स्त्री सरपंच जिस तरह आगे ले गई हैं उससे तो यही लगता है कि पिछड़ी जाति की स्त्रियों को दोहरा आरक्षण भी मिलना चाहिए, लेकिन इस शर्त के साथ कि एक पिछड़े परिवार को एक विशेष आरक्षण सिर्फ एक बार मिले। जिस परिवार का एक व्यक्ति सफल शासन कर चुकी का है या पब्लिक एरिना में आ चुकी चुका है, उसकी अगली पीढ़ी इतनी उन्नत हो जाती है कि उसको आरक्षण की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद की पीढ़ियों में आरक्षण का सिर्फ दुरुपयोग ही होता है। पिछड़ी जाति के मंत्रियों, राजनेताओं, अफसरों, बुद्धिजीवियों के बच्चे किसी कुंठा या अभाव का शिकार नहीं होते। स्वारक्षण हो किंतु एक बार, सिर्फ एक पीढ़ी तक। सामान्य स्त्री आरक्षण पर भी यह बात लागू होती है। रही उन बिलों कानूनों की बात जो पारित हैं, उनका कार्यान्वयन हमें सफलतापूर्वक नहीं हो पाता। इनके सफल कार्यान्वयन में पितृसत्ता कैसे बाधक बनती है, इसका अध्ययन कुछ प्रमुख केसों के सजग विश्लेषण द्वारा संभव है, जिनमें प्रमुख हैं भावरी देवी और मथुरा केस, शाहबानो केस आदि। संक्षेप में यही समझ लेना चाहिए कि क दहेज मांगते हुए वरपक्ष इसलिए नहीं हिचकता कि उसको लगता है कि पिता के संपत्ति का सिर्फ यही अंश तो दुहती है दुहिता, इस पर उसका हक है, आगे की देखभाल तो हम ही करेंगे। कभी कभी उसको यह भी लगता है कि बहू से नहीं लेंगे तो बेटी को देंगे क्या। दहेज से ही पगड़ी ऊंची होती है, सामाजिक रुतबे का मार्कर है दहेज। IAS से लेकर चपरासी तक सबका एक प्राइस टैग है, दिखावे की शादी बिना सहायता राशि के कैसे होगी। ख बलात्कार के बारे में बात करते हुए पितृसत्ता आबैल मुझे मार का तर्क आजमाती है, कहती है कि लड़कियां खुद मुसीबत मोल लेती हैं, आकर्षक भड़काऊ कपड़े पहनकर या देर रात घर से निकलकर। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कुछ चरित्रहीन औरतें खुद अपने कपड़े फाड़ कर सदपुरुषों को बदनाम किया करती हैं। सदपुरुष का विपक्षी उनसे यह काम करवाता है, और चूंकि ये बिकी हुई होती हैं, इनकी तो पहले से कोई इज्जत नहीं होती, तो लूटने को क्या रहा। ग स्त्री भ्रूण हत्या के समर्थन में तर्क यह दिया जाता है कि लड़कियों की सेना पाल कर क्या होगा, उन्हें तो पराए घर जाना है, हमारे मयूर तख्त की और परलोक की रक्षा तो मर्द बच्चा करेगा। घ बेटियों को पिता के संपत्ति में हिस्सा मिला तो भाई भाभी रुष्ट हो जाते, बेटा बहू को रुष्ट करके माँ बाप अपनी मिट्टी पलीत करना नहीं चाहते, सो बेटी को यही समझाते हैं कि बेटियां त्याग की मूरत होती हैं, थोड़े से पैसों की खातिर भाई से रगड़ा मायका छूट जाएगा, मायका यानी वैकल्पिक संसार। अंग घरेलू हिंसा कानून के विपक्ष में कहा जाता है कि घर की बात सड़क पर लाने से वह और अधिक बिगड़ जाती है। पति पत्नी के बीच उभरी एक दरार बार बार सार्वजनिक हो जाए तो फिर मर्दों की आंख का पानी भी चला जाता है। सहजीवन को पितृसत्ता एक स्वाभिमानी अभियान, स्वार्थी अभियान और खतरनाक खेल कहती है, इसलिए कि यह दो परिवारों के बीच का बंधन न होकर दो लोगों के बीच का करार होता है, और खतरनाक इसलिए कि दोनों में से किसी एक की नौकरी छूटी तो उसे उस तरह की आर्थिक सुरक्षाएं नहीं मिलती जो विवाह के घेरे में मिलती है। बच्चों का भविष्य भी खटाई में पड़ जाता है। दहेज वाली आपत्ति का जवाब है पिता की संपत्ति में बेटी का हक और सादा विवाह समारोह। बलात्कार वाली आपत्ति का जवाब मेडिकल रिपोर्ट और यह सामान्य ज्ञान की मेरी एक आंख फूटे तो फूटे, तुम्हारी दोनों फूट जाए, स्त्रियों को यहाँ नहीं चलता। समाज उनके प्रति अधिक निष्ठुर है, फिर अपवादों के कारण नियम नहीं बदले जा सकते। कन्या भ्रूण हत्या और बेटे को खुश रखने के मनोविज्ञान का सीधा जवाब यह है कि आसपास के सब घरों पर निगाह फेरें और स्वयं आकलन करें कि बुढ़ापे का भावनात्मक या आर्थिक आलंबन बेटे हैं कि बेटियां। एक कानून तो यह भी पारित किया जा सकता है कि बुढ़ापा बेटियों के साथ ही गुजरेगा, हर घर की समस्या सुलझ जाएगी, सास बहू के झगड़े भी निपटेंगे, बेटों को घर से मतलब ही कितना रहता है, मतलब रहे भी तो माता पिता के सिरहाने बैठकर उसके सुख दुख बतियाने का समय कितना निकाल पाते हैं। घरेलू हिंसा बिल के प्रतिरोध का जवाब यह कि साम दाम के बाद ही मजबूरी में कोई स्त्री दंडभेद आजमाती है। जब तक पानी सर के ऊपर नहीं आता, कांता समेत उपदेशों से वह काम चलाती है और दो चार थप्पड़ तो यूं ही टेसुए बहाकर भुला देना आम बात है उनकी खातिर। अच्छे सहजीवन की खातिर दोनों पक्षों का अविवाहित और नौकरीशुदा होना एक जरूरी शर्त है, क्योंकि इसमें आर्थिक अधिकार सुरक्षित नहीं होते। इस बात का खतरा तो है कि मन भर जाए तो कोई बिना किसी आर्थिक अवलंबन के बीच सड़क अकेला छोड़ सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चे पालना भी मुश्किल होगा। विकसित समाजों में इस ढंग का व्यक्तियन निभाना आसान है। विकासशील देशों में इसका मुआवजा भोग तो रही है वे सारी आदिवासी दलित निरक्षर औरतें जिन्हें बहला फुसला कर परदेशी कुछ दिनों के खातिर घर रख लेते हैं। मन भरते ही या तबादला होते ही दूध की मक्खी हो जाती हैं वे। कोई किसी के साथ पंजीयन के बाद ही रहना शुरू करे तो ठीक, वरना चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अंतहीन सिलसिला किसी के रोके रोकेगा नहीं। यदि कोई राह चलते चलते इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उसे से रिश्ता बनाना जरूरी लगा तो यह रिश्ता दोस्ती का हो सकता है, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं और यह किसी के रास्ते भी नहीं आता। साहित्य के कटघरे में जेंडर जस्टिस की अवधारणा। नैतिक उहापोह का दौर भी एक होता है जब सहसा समझ में नहीं आता सही क्या गलत क्या। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। किसी के मनोसामाजिक परिस्थितियां समझो तो जजमेंटल होना वाकई मुश्किल है, फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी करना ही होता है ताकि समाज में जंगल राज न कायम हो जाए। ऐसे में गांधी जी की हेट द सीन एंड नॉट द सीनर वाली प्रपत्ति भी बड़े काम की सिद्ध होती है, पर सजा देना जिसका धर्म ही हो वो करे तो करे क्या। आज प्रकृति और कानून की नज़र में सब बराबर है सिद्धांतता, पर यह भी जग जाहिर है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और एक जमाना वह भी था जब प्रकृति और धर्म की निगाह में कागजी तौर पर भी सब बराबर नहीं थे। मलेच्छ स्त्रियां, दलित और गरीब कभी करुणा का पात्र थे, कभी ताड़न के अधिकारी, और विकास के समान अवसरों की कल्पना भी उनके लिए असंभव थी। उन्हें अन्य और ओछा जानकर उन्हें बर्दाश्त किया जा सकता था या सुधारा जा सकता था। समकक्ष भाव से उनसे राय विचार भी कल्पनातीत था। बाद में नए संविधान बने, समकक्ष मौलिक अधिकारों की बात उठी तो वोट, शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति जैसे मौलिक अधिकार भी कृपा भाव से और आंशिक तौर पर सेक्शन होने लगे। यही वह दौर था जब औरतों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्याय की देवी भी स्त्री ही है, पर उसकी आंखों में पट्टी बंधी है। गांधी के तीन बंदरों की तरह और गांधारी की तरह यहां विकलांगता उड़ी गई है। प्रेम के देवता क्यूपिड के साथ भी यही दुर्घटना घटी थी, उसे भी आंखों में पट्टी बांधे अंधेरे में तीर चलाता दिखाया गया। प्रेम अंधा होता है, कानून अंधा होता है। वर्ण, लिंग, वर्ग, संप्रदाय की राजनीति न खेलता है न खेलना चाहता है। एक व्यक्ति और दूसरे में भेद नहीं करता। इतनी सी बात बताने के लिए आंखों पर पट्टी जी से बांधनी पड़े। जाहिर है कि उसे अपने सम्यक दृष्टि पर पूरा विश्वास नहीं। यदि उसे अपनी आंखों से यथार्थ परखने दिए जाए तो बहुत संभव है कि वह केस की आत्मनिष्ठ व्याख्या करे, वस्तुनिष्ठ न्याय नहीं। हाथ का तराजू संतुलन का प्रतीक है, पर कई बार इसका पलड़ा मानवीय कमजोरियों की ओर झुक जाता है और वह चाहते न चाहते अपने जैसों के पक्ष में थोड़ी हुंडी मार भी जाता है। अपनी जात बिरादरी, दीन मजहब की ओर पुरुष है तो पुरुष पक्ष जाहिर कर देता है और क्लास लॉयल्टी की तो बात तो जाने ही दे। फिलहाल मैं जेंडर जस्टिस तक की बात जारी रखूंगी और चाहूंगी कि आत्मविश्लेषण पर कर खुद परखे कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन सुलझाते हुए आपका मन कितनी बार पुरुष पूर्वग्रह से ग्रस्त हुआ। क्या जैनेन्द्र की नायक की तरह आपने अपनी जजी को लानत भेजी? कभी आपको यह एहसास हुआ कि आप भी एक तरह के कवि हैं, एक तरह के भाग्य विधाता, और आपको भी वैसे ही पोएटिक जस्टिस करनी है जो जजमेंटल होने से बचाए? उंगली उठाए तो पर इस एहसास के साथ कि ज़्यादातर लोग, खासकर स्त्रियाँ, परिस्थितिवश अपराध करती हैं और अधिकांश केसों में अपराध का लाचार शिकार ही होती हैं वे। जिसे कानून हाथ में लेना कहते हैं वह दुर्दम्य वाई फैक्टर के प्रभुत्व में होता है। स्त्रियों में वाई फैक्टर होता नहीं। उनका समाजीकरण भी कुछ वैसा होता है कि वे लॉ अबाइडिंग नागरिक होती हैं, फिर भी पग पग पर कितना अन्याय, कितनी जिल्लत उन्हें झेलनी होती है। इसका कच्चा चिट्ठा खोलता है स्त्री साहित्य और कुछ इस तरह इस मार्मिकता के साथ कि आपकी आंखें झुक जाएं। इसलिए स्त्री विमर्श और स्त्री साहित्य से आपका रूबरू होना जरूरी है। स्त्रीवाद के प्रथम चरण में स्त्रियों ने जैविक शरीर के रूप में उन पूर्वग्रहों और जलालतों से मुक्ति चाही थी जिसका प्राइम साइट स्त्री शरीर है, और फिर निर्णायक समितियों में अपनी स्पष्ट हिस्सेदारी। दो विश्वयुद्धों के दौरान निःशस्त्रीकरण और सृजनात्मक आवेगों को जितना प्रत्यक्ष समर्थन नवप्रसूत लिबरल फेमिनिस्टों से मिला और किसी से नहीं। उसके बाद के वर्षों में बौद्धिक विमर्शों और कला क्षेत्रों की चैंपियनशिप इसने हासिल की। इस दौरान विद्रूपण, विलोपन आदि सांस्कृतिक दुर्भिसंधियों से मुक्ति तलाशते सशक्त स्त्री चरित्र साहित्य भी सामने आया। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण के बाद की दिक्कतों पर स्त्रीवाद की दृष्टि गड़ी है। स्त्रीवाद प्रश्न कीलित करता है पर्यावरण और ट्रैफिकिंग से जुड़ी समस्याएं, विस्थापितों और शरणार्थियों का त्रास, एड्स का भय, और छठे दशक में उभरी यौन मुक्ति की दुर्दम्यता। यही वह समय है जब सामाजिक और वैधानिकी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न के मसले नया स्त्रीवादी नजरिया पा रहे थे। मिलिटेंसी और हिंसा के खिलाफ खड़ी स्त्री चेतना स्त्री अधिकारों का मुद्दा इस प्रकार उठा रही है कि विशिष्ट अधिकारों का आलोक एक नए तरह की स्त्री सब्जेक्टिविटी रच सके। संक्षेप में कहें तो एक सच्चे सेक्सुअल प्रजातंत्र का विकास स्त्री आंदोलन का मूल मुद्दा है, जो कानूनविदों की मदद से ही फूले फलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला आतंकवादी तरीका अपनाने से स्त्री आंदोलन स्पष्ट गुरेज करता है। इसलिए कानून की सुविचारित सुरक्षा उसे चाहिए और कागज पर घरेलू हिंसा अधिनियम के पहले भी दहेज, बलात्कार, संपत्ति आदि दुरूह मुद्दों पर कानूनविदों ने स्त्री संगठनों की स्पष्ट मदद की है। जो कमियां छूट गई हैं उनका निराकरण कानूनविदों में स्त्री दृष्टि के विकास से ही संभव होगा, और यह स्त्री दृष्टि करुणा सम्मिलित न्याय दृष्टि विकसित करेगा साहित्य ही। दुनिया का सारा साहित्य व्यक्ति के न्याय भाव, उसके निरक्षर विवेक का उद्बोधन। साहित्य एक ऐसी अदालत है जहां लेखक अलग अलग पात्रों के पीछे से अपनी वकालत करता है और अंत में पोएटिक जस्टिस करता न्यायविद बनकर सामने आता है। यूं इसी तरह साहित्य यूटोपिया भी है। उसके फैलने सूक्ष्मतर नैतिकता से परिचालित होते हैं, बुद्धि के नियामक उपयोग से नहीं। उसके हाथ में लोहार का हथौड़ा होता है, लकड़ी का नहीं। यह ऑब्जेक्टिव ओवर रूल्ड आर सबस्टेंड से जैसे बोया वैसा काटा आदि कहावतें सृष्टि में कार्य कारण संबंध की महिमा रेखांकित करती हैं, और न्याय की सर्वमान्य परिभाषा का आधार प्रेमीय भी बनती हैं। किंतु दैनंदिनी अनुभव बताते हैं कि मनुष्य जो बोता है जरूरी नहीं है कि वह उगे ही। कभी कभी जमीन ही बंजर होती है और अगर बोए हुए बीज उग भी गए तो फसल वही काटेगा जिसने बीज बोए। कोई और काट कर नहीं ले जाएगा उसकी फसल बाहुबल से या करदंड से, इसकी गारंटी नहीं। न्यायालय इसकी गारंटी लेते हैं पर जिसकी लाठी उसकी भैंस। देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और आदि कहावतों का सच का दूसरा पहलू भी उजागर करती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन होता अक्सर यही कि फैसला आते आते उम्र ही बीत जाती है और लोग जेब में हाथ दिए इस सहजता से जेल चले जाते हैं जैसे खाला के घर जा रहे हों या ससुराल। ये दो दीवाने दिल के चले हैं कैसे मिलके, चले हैं ससुराल। एक पजामा दो भाई पारा पारी कचहरी जाई। स्त्री संबंधी जो अपराध होते हैं उनकी एम्बिग्यूटी या झुटपुटे का घेरा और भी सघन होता है। बलात्कार का प्रोवोकेशन आया कहाँ से? लड़की ने स्कर्ट छोटी पहनी या वह खुद ही शिकारी किस्म की थी या किसी भले आदमी को जाल में फंसाने के लिए भेजी गई विषकन्या, उसकी किसी दुश्मन की भेजी हुई, उसकी इज्जत कोई थी ही नहीं तो जाती क्या? ये आम विवाद हैं जो प्रखर से प्रखर न्यायविद को धुमाइत करते हैं। जेंडर लॉयल्टी या मर्द मानसिकता के तहत घटना के कई साल बाद औरत के दुनिया जहान में भरपूर अपमानित हो लेने के पश्चात कोई छोटी सी टिप्पणी आती है, लोग के मन में यह जज्बा भरती हुई कि वे जजमेंटल न हो। हर अपराधी परिस्थितियों से मजबूर होता है, इसलिए गेटे की तरह सच का दूसरा पहलू दिखाती हुई वह यह भी कह जाती है कि दुनिया का कोई अपराध नहीं जो करते हुए मैं अपनी कल्पना न कर पाऊं। इस प्रकार वकील और जज होने के पहले कोई भी व्यक्ति कल्पना के जूतों में अपराधी बनकर भी देखता है। इसे ही कहते हैं परकाया प्रवेश, जो सुधारात्मक न्याय का प्रवेश द्वार भी है। किंतु स्त्री प्रसंग में कहां जाते हैं ये सब संत वचन? जैसा टुइया सा फैसला सुना जाता है भूम, जैसे दिवाली में पटाखे वाली खिलौना बंदूक से कोई मूसी हुई गोली छूटी हो। फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। आबल मुझे मार। कई बार स्त्रियां हत्या भी करती हैं। दूसरी सीता या प्रतिघात जैसी फिल्में सिर्फ एक रिवेंज ट्रेजेडी नहीं होती, लंबे मनोसामाजिक संघर्ष के बाद की थकान अनंत मानसिक या दैहिक दोहन का परिणाम होता है कि जन्म देने वाली जीवनदायिनी उद्धुर शक्ति खड्गधारणी हो जाती है। कम से कम औरतें कानून हाथ में लेने का वैयक्तिक फैसला तब ही करती हैं जब उनको अदालती फैसले पर कोई विश्वास नहीं रहता। कानून प्रमाण खोजता है और अंधेरे बंद कमरों के उस मानसिक दोहन का प्रमाण क्या जो तहमीना दुर्रानी के ब्लॉस्फेमी या माय फ्यूडल लॉर्ड जैसे उपन्यासों में पूरी बेबाकी से चित्रित है। ऊंच नीच से घिरे समाज में बराबरी एक समस्याग्रस्त कैटेगरी तो है ही। डेडलाइन और शादी.com। प्रेम एक कठिन उपक्रम है। उससे भी कठिन उपक्रम है प्रेम का संस्थायन, यानी प्रेम विवाह। ज्यादातर स्थितियों में जिसे प्रेम विवाह कहते हैं वह आत्मनियोजित विवाह होता है। इसमें हानि लाभ के वे ही आकलन फिजिक्स केमिस्ट्री इतिहास भूगोल के वही सूत्र काम करते दिखते हैं जो बुजुर्गों से तय कराए थाली में परोस कर सामने किए गए प्रस्तावों में। जेही के जेही पर सत्य सने हो सो तेही मिलहि न कछु संदेह हो। इस निकष पर तो सादे के फेरों से दूर रह गए बेचारे राधा कृष्ण, दांते बियट्रिस, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, सोहनी महिवाल आदि सब शास्त्री प्रेमियों का स्नेह असत्य के खाते में पटक दिया जाए। और अगर हेमिंग्वे की बात माने तो प्रेम की परिणति सुखद तो कभी हो ही नहीं सकती। पर एक सच यह भी है कि शिव पार्वती, राम सीता, विष्णु लक्ष्मी और हजार मस्त मलंग विवाहित जोड़ों पर आधी दुनिया टिकी है। सुखी परिवारों की आधी दुनिया। कोष्टक में संदर्भ अन्ना करेनिना की पहली पंक्ति, सारे सुखी परिवार एक ही ढंग से सुखी होते हैं और हर दुखी परिवार होता है एक अनूठे ढंग से दुखी। पुस्तक खैर, यह विषय अगाध है। इस बारे में निश्चित क्या निष्कर्ष निकाले जाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। फिलहाल इतना ही कि प्रेम तो सबको नसीब नहीं होता, लेकिन शादी प्रायः सबकी हो जाती है। आत्मिक या मानसिक जरूरतें पूरी हो न हो, आदमी की भौतिक और सामाजिक जरूरतें पूरी होती रहें, इसका इंतजाम सभी समुदायों में हमेशा से भरपूर रहा है। प्रकृति जिन्हें थोड़ा आकर्षक बनाती है, उनके आगे पीछे तो युवावस्था के उत्तरार्ध तक इतने भद्रजन अभद्रजन लगातार मंडराते हैं कि तीन बुलावे तेरह आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे का आलम घिर आता है। पर प्रकृति का सबसे वाहियात वरदान दैहिक सौंदर्य सौभाग्य दुर्भाग्य से जिनके पास नहीं होता, उनकी शादी का इंतजाम इसके सिवा क्या हो कि उनके बीच सेतु निर्माण का कार्य चले और फिर वही तोड़फोड़, वही डाइवर्जेंस, वही धुआं धक्कड़, वही अंतहीन इंजाम की वह सुबह कभी तो आएगी जब सब ठीक ठाक होगा। वैवाहिक मध्यस्थता की अपनी लंबी और समृद्ध परंपरा सभी सभ्यताओं में रही है। दो या दो परिवार बिना मध्यस्थों के पहल के गले गले मिल जाएं, इस पर हमेशा से भ्रुकुटियां तनी हैं। समाज की पुरधायन पंथी में ही तो उसका वर्चस्व छुपा है। तभी तो वह व्यक्तियों को उनकी औकात बताते रहने में कभी नहीं चूकता, कभी ढीली नहीं करता उन पर अपनी लगाम। आदमी के भीतर असुरक्षा या अनिश्चित भविष्य का जो अनजाना खौफ छुपा है, खतरे न उठाने का मूलभूत आग्रह, उसका भरपूर फायदा समाज उठाता है और अच्छे दलाल की तरह लाभ का अच्छा प्रतिशत व्यक्ति को भी देता ही है, देता है मौलिक सुविधाओं की गारंटी। सुविधा जुटाने की होड़ में सूख गूलर का फूल हो जाए यह बात अलग है। प्राचीन यूनान में बुद्धिमती स्त्रियों की एक सिविल सर्विस ही चलती थी कि जिसका मुख्य कार्य था विवाह योग्य लड़की लड़कियों की डायरेक्टरी तैयार करके संबंध परिवारों तक पहुंचाना। रोमनों और यूनानियों के यहाँ भी प्रायः यही परंपरा थी और अंध युग से लेकर अब तक यूरोप में भी विवाहित प्रौढ़ाएं विवाह योग्य लड़की लड़कियों को पार्टी या बाल रूम या अन्य सामाजिक समारोहों में एक दूसरे से परिचित कराती हैं कि आजमाकर देख लो, कहीं बात बन गई तो बन ही गई। एडवर्डियन युग में संभावित युगलों के मन में प्रेम के बीज अंकुरा देने की कला खूब फली फूली। समृद्ध स्त्रियां फोरसाइट सागा के से विशाल भवनों के सुसज्जित कक्षों में बड़े बड़े बॉल्स आयोजित करती थी। खूबसूरत बगियों में बैठकर तरह तरह के चाकचिक के पूर्ण परिधान पहने युवक युवतियां वहां आते थे और शाम की शुरुआत ही होती थी कि कुछ इस ढंग से, इनसे मिलिए, ये हैं, अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप पहले मिल चुके हैं, मैं बहुत दिनों से मन ही मन इनको सराहता रहा हूं मदाम। जरा सोचिए तो इस तरह के हास्यास्पद ढंग से औपचारिक वाक्यों में अंतरंग रिश्तों की नींव पड़ा करती थी। प्राइवेट और पब्लिक का अटपटा समन्वय था यह। इसकी भाषा भी उतनी ही भड़कीली और लटपट थी जितनी कि बोलने वाले की दुमछल्ला गांव ने उन्हें पकड़कर सेवक चला करते थे। तो अस्ताय के वार एंड पीस में ऐसे दृश्यों की भरभार है जहां सार्वजनिक रूप से समारोह पूर्वक प्रेम का इजहार होता है, उसके बाद होती है शादी। बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, प्रायः इसी दर्शन के तहत अपने यहाँ दरबारों में देश देशांतर की सुंदरियों के रूप वर्णन चित्र प्रस्तुति की परंपरा से लेकर स्वयंवर आयोजन की परंपरा तक रही है। उसके बाद अपहरण बलात्कार आदि के किस्सों से लेकर दुल्हन वही जो पाठक जी दिलवाए, रिश्ते ही रिश्ते एक बार मिल तो लें कि पड़ाव तक ब्याह शादी की मध्यस्थता के एक से एक किस्से रहे। सामान्य घरों में नाइनों और पंडितों की मध्यस्थता के रोचक प्रसंग घटित होते थे जिसका एक बड़ा हिस्सा लोकगीतों लोक गाथाओं में भी छनाया है। आज इन सारी जटिल प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण डेडलाइन और शादी.com में हो गया सा दिखता है। शादी.com के जरिए तो फिर भी विवाह के प्रत्याशी सामान्य जोड़े एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। डेडलाइन के कुछ प्रस्ताव तो मुझे अनूठे दिखे। दो बानगियां प्रस्तुत हैं। डेविड 55 साल के चार्टर्ड इंजीनियर खाली समय क्लासिकल और रॉक संगीत सुनते हैं या फिर जंगल में टहलते हुए दूर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर भी साथ चल सकने वाली कोई चाहिए, अकेलापन डसता है, खुद को संवेदनशील और महत्वाकांक्षी मानते हैं। लीना 42 साल की होटल मैनेजर, सुंदर और स्वस्थ, सिगरेट नहीं पीती, सोशल ड्रिंकिंग पसंद है, सिनेमा थिएटर भी, कभी कभी शामें अकेली हो जाती हैं, साथ लेटकर बचपन की बातें करने वाला कोई चाहिए। इस पर सातों तक सीमित रखना होगा, उसके बाद की छुअन से उबकाई आती है। खुद को आत्मविश्वास और स्नेह से लबालब मानती हैं। कितना अकेला हो गया है बुढ़ापा, करियर की धूमधाम में कई लोग समय से शादी नहीं कर पाते, कई करते हैं तो टूट जाती है शादी, और नहीं भी टूटती तो नून, तेल, लकड़ी और बाल बच्चों की अनंत सुविधाओं के जुगाड़ में नीरस और बेरंग हो जाती है। कई बार असमय वैधव्य आ घेरता है, बच्चे भी इधर उधर देश परदेश छिटक जाते हैं, चिट्ठियां नहीं आती, आते हैं फोन कॉल, संक्षिप्त और कामकाजी, किताबों पर परत दर परत धूल चढ़ती जाती है और परेशानी पर परत दर परत चढ़ता जाता है खिन्न मन अकेलापन। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी को रोटी मिल भी जाती है तो सीधे मुंह बात करने वाला कोई नहीं मिलता, तभी तो उनके मन में ऐसी ख्वाहिश जगती है कि जिन पर पहले युवक युवतियों का एकाधिकार समझा जाता था। लोग हंसते हैं कि कब्र में पैर लटके हैं और ऐषणाओं का अंत नहीं हुआ। बूढ़ी घोड़ी, लाल लगाम, टाट पर रेशमी पैबंद आदि हृदयहीन कहावतें भी समाज में बाजाब्ता प्रचलित हैं, पर ठीक से सोचा जाए तो कितनी सूक्ष्म होती है बुजुर्गों की मांगे। सिर्फ इतनी ही तो कि समय पर खाना मिल जाए, कभी कभी सिर पैर दबा दे कोई, यह एहसास जगा दे कि वे जिंदा हैं, जीते जी मर नहीं गए। थोड़ा सा उनका अनुभव वृत्तांत सुन ले कोई, उनसे उनके बचपन की बातें कर ले, दो चार मशवरे ले ले, चार कदम साथ चल दे, घर से निकलते समय बता भर दे कि कहाँ जा रहे हैं और कब लौटेंगे। लोग अक्सर ऐसे ही जहमत समझ कर कुफ्त होते हैं या मजाक उड़ाते हैं उनका, लेकिन ऐसे प्रसंगों में हंसी समस्या को गैर जिम्मेदाराना ढंग से एक ओर टहरकाने की हृदयहीन कला का नाम बन जाती है। इसके जवाब में एक बुजुर्ग महिला अपनी सखी को परामर्श देते हुए हंसकर बोली, बुढ़ापा ठीक काटने का तो एक ही उपाय है शीला, कि पर्स का मुंह खुला रखो और अपना मुंह बंद। जवानी के साथ यह अजीब चक्कर है कि जब तक यह रहती है आदमी को होश ही नहीं रहता कि कभी यह जाएगी भी, कभी हम पर भी ये दिन आएंगे। गांव और छोटे शहरों में हंसोड़ नाइने और गदबदे पंडित कुंडलियों का पुलिंदा लिए जब भी घर घर घूमते हैं, मनोरंजक होता है उनका रंग ढंग। अकेले बूढ़ी बूढ़ियों से छेड़छाड़ तो कर लेते हैं, उनसे कई गीत, श्लोक, दोहे, कहावतें आदि, किंतु उनमें कठोर कटाक्ष हमने कभी नहीं सुना। वहाँ तो सामुदायिक जीवन में वानप्रस्थ का भी अलग रसरंग है, एक अलग तरह की उपादेयता। बड़े शहरों में शायद यही भूमिका निभाने की कोशिश है संबंध .com। डॉट और कॉम की तरह ही संक्षिप्त और खासे नामालूम रिश्ते हों या घर के अंतरंग बंधन, आदमी औरत के अकेलेपन से शतरंज की एक बाजी तो खेल ही जाते हैं ये। पर हाँ, ऑफिसों, कॉरपोरेट सेक्टरों और कई अन्य बड़े संस्थाओं से जुड़े बुजुर्ग, बॉस और गॉडफादर छोटी बच्चियों युवतियों का जो यौन शोषण अपने रुतबे का फायदा उठाते हुए करते हैं वह तो घृणास्पद है। प्रयोजन मूलक, कार्यसिद्धि मूलक या जबरदस्ती स्थापित अस्थायी संबंध आदमियत के मुंह पर तमाचा है। किसी इंसान की यह मजाल नहीं होनी चाहिए कि वह दूसरे इंसान को कार्यसिद्धि का उपादान भर समझे। स्नेह, सहानुभूति, वात्सल्य, ममता जगाकर उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ने की कोशिश वितृष्णाकारी तो होगी ही। जिनमें प्रतिभा कम होती है, महत्वाकांक्षा ज्यादा, वे लड़कियां लंबी साधना से घबराकर भौतिक सफलता का शॉर्टकट अपनाने के फेर में दांत पर दांत चढ़ाकर उबकाई रोकते हुए बुजुर्गों का यौन शोषण सह भी लें तो बुजुर्गों को समझना चाहिए कि ऐसा अनमना स्वीकार खुद उनके लिए स्वाभिमान के अनुकूल है क्या। जजाति बनाना खुद उनके स्वाभिमान के अनुकूल नहीं, और स्वाभिमान से बड़ी क्या चीज होती है भला। इससे तो अच्छा है कि उत्तर आधुनिक नाइनों के सहारे अपनी उम्र और अपनी रुचि का सहचर तलाशें, जिसकी भावनात्मक आवश्यकताएं इनकी भावनात्मक आवश्यकताओं से थोड़ी तो मेल खाएं।